एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है एकत्र ज्ञान गोष्ठी में। मैं हूं आपका मेजबान
और मैं हूं आपकी सह मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं।
हाँ बिल्कुल,
मानव स्मृति मतलब हमारी याददाश्त।
हम कैसे याद करते हैं, क्यों भूल जाते हैं और सबसे बड़ा सवाल शायद, क्या हमारी यादें भरोसेमंद हैं?
सही कहा। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और हमारी चर्चा का आधार है जोनाथन के फॉस्टर का काम।
हाँ, फॉस्टर जो इस फील्ड के जाने माने विशेषज्ञ हैं।
बिल्कुल, और ये विषय जरूरी इसलिए भी है क्योंकि याददाश्त भाई ये तो हमारे वजूद का हिस्सा है ना?
एकदम, हमारी पहचान, हमारे रिश्ते, जो सीखते हैं, सब कुछ।
पर हम अक्सर इसे मतलब एक वीडियो कैमरे जैसा मान लेते हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है।
हाँ, ये आम धारणा है।
लेकिन क्या वाकई ऐसा है? कभी होता है ना, एक ही घटना को दो लोग बिल्कुल अलग तरह से याद रखते हैं।
बिल्कुल होता है।
तो क्या मतलब कोई एक झूठ बोल रहा है या कुछ और बात है?
हाँ, आज हम इसी कुछ और बात को समझने की कोशिश करेंगे फॉस्टर के नजरिए से।
बढ़िया, तो फिर शुरू करते हैं लेखक से ही। कौन है ये जोनाथन के फॉस्टर, थोड़ा बताइए इनके बारे में।
जरूर। तो जोनाथन के फॉस्टर सिर्फ एक किताबी विद्वान नहीं है, वो एक अनुभवी क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट भी हैं।
अच्छा।
उनके पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस, तंत्रिका विज्ञान और यहाँ तक कि मन के दर्शन फिलॉसफी ऑफ माइंड में भी गहरी समझ है।
वाह, काफी फैला हुआ क्षेत्र है।
हाँ, और उन्होंने कैम्ब्रिज जैसे बड़े संस्थानों में काम किया है।
लेकिन क्या बात उन्हें खास बनाती है, मतलब और भी तो एक्सपर्ट होंगे।
असल में उन लोगों के साथ काम किया है जिनकी याददाश्त को चोट लगी है,
जैसे
ब्रेन इंजरी से या फिर अल्जाइमर जैसी बीमारियों से।
ओहो, तो मतलब उन्हें पता है कि ये चीज असल में कैसे काम करती है
और कैसे बिगड़ती है।
एग्जैक्टली।
तो उन्हें सिर्फ थ्योरी नहीं पता बल्कि प्रैक्टिकल अनुभव भी है।
हाँ,
वो विज्ञान और असल जिंदगी के अनुभव को जोड़ते हैं।
ये तो बहुत जरूरी है, इससे उनकी बातों में वजन आता होगा, वो सिर्फ हवा हवा ही नहीं लगती होंगी।
बिल्कुल, यही उनके नजरिए को ज्यादा जमीनी और भरोसेमंद बनाता है।
ठीक है, तो अब आते हैं उनके काम के मूल विचार पर। फॉस्टर साहब कहना क्या चाहते हैं अपनी रिसर्च से?
उनका जो सबसे मुख्य तर्क है वो ये है कि हमारी याददाश्त कोई वीडियो रिकॉर्डर नहीं है या कोई फाइल कैबिनेट भी नहीं जहाँ से हम पुरानी फाइलें हूबहू निकाल लें।
अच्छा, तो फिर क्या है?
ये एक एक्टिव प्रोसेस है, गतिशील, और सबसे जरूरी बात, ये मौलिक रूप से पुनर्निर्माण करने वाली प्रक्रिया है।
पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्टिव, ये शब्द थोड़ा भारी है। मतलब क्या हुआ इसका? आसान भाषा में रिकॉर्डिंग नहीं तो क्या?
मतलब ये कि जब भी हम कुछ याद करते हैं हमारा दिमाग उसे प्लेबैक नहीं करता। सोचिए जैसे कोई आर्कियोलॉजिस्ट होता है ना, उसे कुछ बिखरी हुई हड्डियां मिलती हैं।
हाँ।
और वो उनसे पूरे डायनासोर का ढांचा खड़ा कर देता है।
अच्छा,
दिमाग कुछ वैसा ही करता है। उस याद से जुड़े जो भी टुकड़े मिलते हैं, कोई तस्वीर, कोई एहसास, कोई बात, उन्हें इकट्ठा करता है और फिर उन्हें हमारी आज की समझ, हमारे आज के मूड, हमारे ज्ञान के हिसाब से जोड़कर एक कहानी बना देता है।
अरे, तो मतलब हर बार जब हम याद करते हैं तो कहानी थोड़ी बदल सकती है?
हाँ, एक तरह से हम उसे हर बार थोड़ा बहुत दोबारा लिख रहे होते हैं अनजाने में।
कमाल है, तो मेरा और मेरे भाई का बचपन की छुट्टी को लेकर अलग अलग याद रखना जरूरी नहीं कि कोई गलत है।
बिल्कुल, हो सकता है आप दोनों ने अनजाने में उसे अपने अपने तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है।
वाह,
फॉस्टर का मकसद ही यही है, ये तोड़ना कि यादें पत्थर की लकीर हैं। वो समझाना चाहते हैं कि याददाश्त इतनी अविश्वसनीय क्यों है, हम क्यों भूलते हैं और क्यों कभी कभी हमें ऐसी चीजों की पक्की यादें होती हैं जो शायद शायद कभी हुई ही नहीं।
ये तो गहरा मुद्दा है और इसका असर हमारी चेतना, पहचान, सच की समझ सब पर पड़ता होगा।
बिल्कुल,
चलिए थोड़ा और खोदते हैं इसे। ये रिकॉर्डिंग नहीं, पुनर्निर्माण वाली बात, इसका कोई सबूत है, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह?
हाँ हाँ, बिल्कुल है। फॉस्टर अक्सर सर फ्रेडरिक बार्टलेट के एक बहुत पुराने क्लासिक प्रयोग का जिक्र करते हैं। ये 1930 के दशक की बात है।
अच्छा, क्या था वो प्रयोग?
बार्टलेट ने कुछ ब्रिटिश लोगों को एक मूल अमेरिकी लोक कथा सुनाई। कहानी का नाम था वॉर ऑफ द गोस्ट्स।
अच्छा।
अब ये कहानी जाहिर है उनकी संस्कृति से काफी अलग थी, थोड़ी अजीब थी। उन्हें अजीब लगे या समझ नहीं आए, वो या तो गायब हो गए या बदल गए। उन्होंने अनजाने में कहानी को अपनी समझ और अपनी संस्कृति के हिसाब से ढाल लिया। जो बातें ज्यादा अलौकिक थीं, उन्हें सामान्य बना दिया। कहानी में जो गैप्स थे उन्हें अपने तर्क से भर दिया।
अरे वाह, मतलब उन्होंने कहानी को अपनी दुनिया में फिट करने के लिए एडिट कर दिया।
बिल्कुल सही। बार्टलेट ने इसी से यह नतीजा निकाला कि हम यादों को निकालते नहीं बल्कि बनाते हैं। हमारे पास जो जानकारी के टुकड़े होते हैं और हमारे दिमाग में दुनिया को समझने के जो खांचे बने होते हैं जिन्हें वो स्कीमा
स्कीमा
जैसे कुर्सी का एक स्कीमा है हमारे दिमाग में, बैठने की चीज, चार पैर, पीठ टिकाने की जगह वगैरह। तो कोई नई अजीब सी दिखने वाली कुर्सी को भी हम पहचान लेते हैं क्योंकि वो स्कीमा में फिट हो जाती है।
समझ गया।
तो यादों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम उन्हें अपने मौजूदा स्कीमा में फिट करने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में उन्हें थोड़ा बदल भी देते हैं।
तो ये स्कीमा वाली बात इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या हर तरह की याददाश्त ऐसी काम करती है? मतलब मुझे साइकिल चलाना याद है, वो अलग लगता है, और कल रात क्या खाया वो अलग तरह की याद है।
बिल्कुल सही सवाल। और फॉस्टर यही कहते हैं, याददाश्त कोई एक चीज नहीं है, ये कई अलग अलग सिस्टम का ग्रुप है। मोटे तौर पर दो मेन टाइप है।
कौन कौन से?
पहला है स्पष्ट या घोषणात्मक स्मृति, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेटिव मेमोरी। ये वो यादें हैं जिन्हें हम होश में रहकर याद कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसकी भी दो हिस्से हैं।
अच्छा।
एक है प्रासंगिक स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी। ये हमारे अपने जीवन की घटनाओं की यादें हैं, जैसे पिछली दिवाली कैसी थी, कॉलेज का पहला दिन, कल का डिनर, हमारी जिंदगी के एपिसोड्स एक तरह से।
ठीक है, एपिसोडिक। और दूसरा?
फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, शब्द। जैसे हमें पता है कि दिल्ली भारत की राजधानी है या सेब एक फल है, ये किसी खास निजी अनुभव से जुड़ा नहीं होता।
ये हुई स्पष्ट यादें जिन्हें हम बता सकते हैं। और दूसरा मुख्य प्रकार?
दूसरा है अस्पष्ट या गैर घोषणात्मक स्मृति, इम्प्लिसिट नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। ये वो यादें हैं जो हमारे व्यवहार पर असर डालती हैं पर हमें पता नहीं चलता, हमें होश नहीं रहता उनका।
उदाहरण?
सबसे आम उदाहरण है प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रोसीजरल मेमोरी, यानी स्किल्स और आदतें। साइकिल चलाना, तैरना, टाइप करना, गिटार बजाना, ये हम बिना सोचे समझे कर लेते हैं ना।
हाँ, ये कैसे करने की याददाश्त है।
हाँ बिल्कुल,
बिना सोचे ही हाथ चलने लगते हैं कीबोर्ड पर।
एग्जैक्टली।
तो क्या इस बात का कोई पक्का सबूत है कि ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट सिस्टम वाकई दिमाग में अलग अलग हैं?
हाँ, और इसका सबसे जबरदस्त सबूत आता है एक बहुत ही मशहूर केस स्टडी से, मरीज एचएम की कहानी, हेनरी मोलेसन।
एचएम? हाँ, मैंने सुना है शायद। क्या हुआ था उनके साथ?
उन्हें बहुत गंभीर मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो 1950 के दशक में डॉक्टरों ने सर्जरी करके उनके दिमाग के दोनों तरफ के हिप्पोकैम्पस और उसके आसपास के कुछ हिस्से निकाल दिए।
हिप्पोकैम्पस, ये जरूरी होता है यादों के लिए?
हाँ, खासकर नई स्पष्ट यादें, मतलब नई घटनाएं और फैक्ट्स बनाने के लिए हिप्पोकैम्पस बहुत जरूरी है।
तो सर्जरी के बाद क्या हुआ एचएम के साथ?
नतीजा बड़ा ही चौंकाने वाला था। एचएम अपनी पुरानी यादें, मतलब सर्जरी से पहले की बातें, तो याद रख सकते थे, लेकिन वो कोई भी नई स्पष्ट याद नहीं बना सकते थे, बिल्कुल भी नहीं।
मतलब
वो हर दिन अपने डॉक्टर से मिलते, घंटों बात करते, पर अगले दिन उन्हें पहचानते नहीं थे, जैसे पहली बार मिल रहे हो। उन्हें ये भी याद नहीं रहता था कि 5 मिनट पहले क्या बात हुई या नाश्ते में क्या खाया था।
बाप रे, ये तो बहुत ही मुश्किल जिंदगी होगी। लेकिन क्या वो कुछ भी नया नहीं सीख पाए?
यही तो कहानी और दिलचस्प होती है। वो नई प्रक्रियात्मक यादें, प्रोसीजरल मेमोरी बना सकते थे, स्किल्स सीख सकते थे।
सच में?
हाँ।
कैसे?
उन्हें एक काम दिया गया, आईने में देखकर एक तारे का चित्र बनाना।
जी।
ये मुश्किल काम है। अब एचएम जब भी ये करते, उन्हें लगता वो पहली बार कर रहे हैं, कोई याद नहीं कि पहले किया है।
हाँ।
लेकिन कमाल ये था कि दिन ब दिन उनका परफॉर्मेंस बेहतर होता गया, वो उस काम में माहिर होते गए बिना ये जाने कि वो ये सीख रहे हैं।
ये तो अविश्वसनीय है। मतलब शरीर सीख रहा है पर दिमाग को पता ही नहीं।
बिल्कुल। एचएम का केस इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी दिमाग के अलग अलग रास्तों पर चलती हैं। हिप्पोकैम्पस नई घटनाओं को याद रखने के लिए जरूरी है, पर स्किल सीखने के लिए शायद नहीं।
ये दिमाग की बनावट वाकई कमाल की है। अच्छा, एचएम का केस तो ये दिखाता है कि याददाश्त बनना कितना जटिल है, पर जो बनती हैं वो टिकती क्यों नहीं? हम भूलते क्यों हैं? इसे तो हम एक कमी मानते हैं, एक श्राप।
हाँ, आम तौर पर यही सोच है, लेकिन फॉस्टर का नजरिया बिल्कुल अलग है।
वो कहते हैं कि भूलना कोई खराबी नहीं है, ये एक जरूरी और अनुकूली अडैप्टिव प्रक्रिया है।
फायदेमंद है?
फायदेमंद? भूलना ये कैसे हो सकता है?
जरा सोचिए, अगर हमें अपनी जिंदगी का हर पल, हर डिटेल, हर बेकार की बात भी हूबहू याद रहती
तो दिमाग फट जाता।
हाँ, जानकारी का बोझ इतना होता है कि हम जरूरी और गैर जरूरी में फर्क ही नहीं कर पाते। भूलना हमें फालतू की जानकारी हटाने में मदद करता है, ताकि हम जरूरी चीजों पर फोकस कर सकें, अनुभवों से कुछ सीख सकें, पैटर्न समझ सकें।
अच्छा, एक तरह से दिमाग की सफाई। हाँ बिल्कुल, अपने मेंटल डेस्क को साफ रखना। 19वीं सदी में हर्मन एबिंगहॉस ने भूलने का वक्र दिखाया था। हम नई चीज सीखने के फौरन बाद बहुत तेजी से भूलते हैं, फिर रफ्तार धीमी हो जाती है। शायद ये दिमाग का तरीका है जल्दी से तय करने का कि क्या रखना है क्या नहीं।
ये बात तो सही है, आज की ये दुनिया में तो इतनी इन्फॉर्मेशन है, भूलना शायद और भी जरूरी हो गया है।
शायद हाँ।
क्या कोई ऐसा केस भी है जहाँ बहुत ज्यादा याद रखना ही प्रॉब्लम बन गया हो?
हाँ, फॉस्टर एक रूसी पत्रकार सोलोमन शेरेशेव्स्की, जिन्हें एस कहा जाता था, उनका जिक्र करते हैं। उनकी याददाश्त लगभग परफेक्ट थी, सालों पुरानी बातें, नंबर्स, लिस्ट सब याद।
वाह, फिर दिक्कत क्या थी?
दिक्कत ये थी कि वो छोटी छोटी गैर जरूरी डिटेल्स को भूल ही नहीं पाते थे। इससे उनके लिए बड़ी पिक्चर देखना, अमूर्त चीजें, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ तक कि लोगों के चेहरे पहचानना भी मुश्किल था। हर डिटेल उनके दिमाग पर हावी रहती थी।
ओह, तो मतलब भूलना भी जरूरी है फोकस करने के लिए।
हाँ, उनकी कहानी यही दिखाती है, प्रभावी ढंग से सोचने के लिए भूलना भी जरूरी है।
ठीक है, तो भूलना जरूरी है, लेकिन तब क्या जब यादें ही धोखा देने लगे हैं? ये झूठी यादें, फॉल्स मेमोरीज कैसे बनती हैं? फॉस्टर इस बारे में क्या कहते हैं?
ये सीधा उसी पुनर्निर्माण वाली बात से जुड़ा है, क्योंकि हम यादों को हर बार दोबारा बनाते हैं, तो इस प्रोसेस में बाहरी सुझाव, कोई गलत जानकारी या हमारी अपनी कल्पना भी घुस सकती है।
अच्छा,
इससे यादें बदल सकती हैं या पूरी तरह से नई झूठी यादें भी बन सकती हैं। इस फील्ड में एलिजाबेथ लॉफ्टस का काम बहुत फेमस है।
लॉफ्टस?
हाँ, नाम सुना है। क्या क्या उन्होंने
और उनके साथियों ने कई प्रयोग किए और ये दिखाया कि लोगों के मन में ऐसी घटनाओं की यादें डालना मुमकिन है जो कभी हुई ही नहीं
है। कैसे?
जैसे एक प्रयोग में उन्होंने पार्टिसिपेंट्स के घर वालों से बात करके उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो बचपन में एक शॉपिंग मॉल में खो गए थे और किसी बूढ़ी औरत ने उन्हें बचाया था, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और लोगों ने मान लिया।
कमाल ये है कि बहुत से लोगों ने न सिर्फ मान लिया बल्कि खुद से उसमें और डिटेल्स भी जोड़ दी कि वो औरत कैसी दिखती थी, उन्हें कैसा महसूस हो रहा था, वगैरह वगैरह।
बाप रे, ये तो थोड़ा डरावना है, मतलब हमारी यादें इतनी कच्ची हैं।
हाँ, और यही फॉस्टर एक और जरूरी बात कहते हैं, किसी याद को लेकर हमारा आत्मविश्वास, मतलब हमें कितना पक्का यकीन है कि वो सच है, वो उसकी सच्चाई की गारंटी नहीं है।
मतलब
हमें कोई याद बहुत साफ, बहुत सच्ची लग सकती है, पर हो सकता है वो काफी गलत हो या पूरी तरह झूठी हो। ये उस रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस का साइड इफेक्ट है।
ये बात तो खासकर कोर्ट कचहरी में जो चश्मदीद गवाही होती है उस पर बड़ा सवाल उठाती है।
बिल्कुल।
अब जरा उम्र के साथ याददाश्त के सफर पर आते हैं। बचपन के शुरुआती साल क्यों याद नहीं रहते? वो इन्फेंटाइल एम्नीशिया?
हाँ, शैशव स्मृति लोप, इन्फेंटाइल एम्नीशिया। हम में से ज्यादातर लोगों को जिंदगी के पहले 2-3 साल की कोई घटना याद नहीं होती। इसकी कई वजहें हो सकती हैं।
जैसे?
एक तो ये कि उस उम्र में दिमाग के जरूरी हिस्से जैसे हिप्पोकैम्पस पूरी तरह मैच्योर नहीं होते। दूसरा, भाषा का विकास पूरा नहीं होता जो यादों को कहानी की तरह सहेजने में मदद करती है। और तीसरा, बच्चे में मैं का कॉन्सेप्ट, सेल्फ अवेयरनेस पूरी तरह बनी नहीं होती जिसके आसपास पर्सनल यादें बनती हैं।
और फिर बुढ़ापे में क्या होता है याददाश्त का?
देखिए, उम्र के साथ थोड़ी बहुत भूल चूक होना सामान्य है, जैसे नाम याद आने में देर लगना या चाबी रखकर भूल जाना, ये नॉर्मल एजिंग है।
हाँ।
लेकिन फॉस्टर इस सामान्य भूलने और अल्जाइमर जैसे डिमेंशिया रोगों में फर्क बताते हैं। अल्जाइमर दिमाग की बीमारी है जिसमें ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, इससे याददाश्त और सोचने समझने की शक्ति बहुत ज्यादा घट जाती है, खासकर नई चीजें सीखने की क्षमता।
लेकिन क्या हम कुछ कर सकते हैं इसे रोकने या धीमा करने के लिए?
हाँ, अच्छी खबर ये है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मदद कर सकती है। अच्छा खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, दिमाग को एक्टिव रखना, लोगों से मिलते जुलना, ये सब उम्र बढ़ने पर भी याददाश्त को बेहतर रखने में मदद करते हैं।
अच्छा लगा ये सुनके। तो इस पूरी बातचीत से अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो फॉस्टर के काम का निचोड़, तो वो क्या होंगी?
मेरे हिसाब से 4-5 मुख्य बातें हैं। पहली और सबसे जरूरी, याददाश्त रचनात्मक है, सटीक नकल नहीं। ये वीडियो नहीं, रिकंस्ट्रक्शन है।
हाँ, वो भाई बहन वाली अलग अलग कहानी।
बिल्कुल। दूसरी, भूलना जरूरी है, ये दिमाग की सेहत और कुशलता के लिए फायदेमंद है।
श्राप नहीं, वरदान भी।
हाँ। तीसरी, याददाश्त और हमारी पहचान गहरे जुड़े हैं। हम कौन हैं, ये हमारी यादों की कहानी पर टिका है।
हमारी कहानी।
चौथी, याददाश्त पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस सच्चाई की गारंटी नहीं है, हमें थोड़ा शक करना चाहिए अपनी यादों पर,
थोड़ा विनम्र होना चाहिए। हाँ, ये सब बहुत जरूरी बातें। क्या फॉस्टर के काम में कुछ ऐसी लाइनें या विचार हैं जो इन बातों को और यादगार बना दें, जैसे कोई कहावतें?
सीधे कोट्स तो शायद ना हो, पर उनके विचारों का सार हम ऐसे समझ सकते हैं। एक विचार है, याददाश्त अतीत का वीडियो नहीं बल्कि बिखरी हड्डियों से डायनासोर बनाने जैसा है। मतलब हम टुकड़ों से कहानी गढ़ते हैं।
हाँ, ये अच्छी उपमा है।
दूसरा, भूलना याद रखने का दुश्मन नहीं बल्कि उसका साथी है। दोनों मिलकर काम करते हैं दिमाग को चलाने के लिए।
बिल्कुल।
तीसरा, हम वो हैं जो हम याद रखते हैं, पर जो हम याद रखते हैं वो काफी हद तक एक कल्पना है। मतलब पहचान यादों पर टिकी है और यादें खुद गढ़ी हुई हैं।
ये गहरा है।
और चौथा, याद करने वाला दिमाग वो नहीं होता जिसने अनुभव किया था। हम बदल जाते हैं तो हमारी यादें भी बदल जाती हैं।
वाह, ये सारे विचार सोचने पर मजबूर करते हैं। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। इस सब जानकारी का हम अपनी रोज की जिंदगी में क्या करें, कैसे इस्तेमाल करें?
हाँ, ये जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई सीखने में सिर्फ रटने के बजाय एक्टिव रिकॉल करें। मतलब किताब बंद करके खुद से पूछें क्या पढ़ा, ये ज्यादा असरदार है।
हाँ, ये मैंने सुना है।
और रट्टा भी मारना हो तो लास्ट मिनट पर नहीं, अंतराल देकर दोहराएं।
स्पेस्ड रेपिटेशन।
हाँ, आज पढ़ा, फिर दो दिन बाद, फिर हफ्ते बाद, ऐसे।
ठीक है, स्पेसिंग।
नई चीज को पुरानी जानकारी से जोड़ें, एलैबोरेशन, उसकी इमेज बनाएं, उसे अपनी जिंदगी से जोड़ें। और वो निमोनिक्स होते ना, जैसे लिस्ट याद करने के लिए कोई फनी लाइन बनाना या मेथड ऑफ लोकाई।
हाँ, वो मेंटल पैलेस वाला।
हाँ, वही, वो सब बहुत काम आते हैं।
ये तो स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया टिप्स हैं।
और पढ़ाई के अलावा?
कानूनी मामलों में चश्मदीद गवाही कितनी कच्ची हो सकती है, ये समझना बहुत जरूरी है।
हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और रिश्तों में, अगर किसी पुरानी बात पर आपकी और आपके दोस्त की यादें अलग हैं, तो लड़ने के बजाय ये सोचना कि शायद दोनों सही हैं अपनी जगह, बस यादें बदल गई हैं। इससे झगड़े कम होंगे, सहानुभूति बढ़ेगी।
ये बहुत अच्छी बात कही, बेवजह की कड़वाहट से बच सकते हैं। और सेहत?
हाँ, सेहत का याददाश्त से गहरा नाता है। फॉस्टर जोर देते हैं अच्छी नींद बहुत जरूरी है, सोते वक्त ही दिमाग यादों को पक्का करता है।
नींद,
रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा खाना और मेंटली और सोशली एक्टिव रहना, पहेलियां सुलझाना, कुछ नया सीखना, दोस्तों से मिलना, ये सब दिमाग को तेज रखते हैं।
ठीक है, तो मतलब हम अपनी याददाश्त की देखभाल कर सकते हैं। इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे ज्यादा क्या चौंकाने वाला रहा, या क्या बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गई?
मेरे लिए शायद यही कि हमारी यादें कितनी प्लास्टिक हैं, कितनी बदल सकती हैं, और ये कि हमारा कॉन्फिडेंस सच्चाई का सबूत नहीं है, ये थोड़ा विनम्र बनाता है, अपनी सबसे पक्की यादों पर भी थोड़ा सवाल उठाना सिखाता है।
और मेरे लिए सच कहूं तो ये जानना कि भूलना कितना जरूरी है, हम हमेशा उसे बुरा मानते हैं, पर ये समझना कि ये दिमाग के ठीक से काम करने के लिए, फालतू चीजों से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है, ये सच में एक आहा मोमेंट था, दिमाग की जरूरी सफाई।
बिल्कुल। तो आखिर में यही कि याददाश्त कोई पत्थर की लकीर नहीं, रेत पर लिखी कहानी है, समय के साथ बदलती है, और शायद यही बदलाव हमें इंसान बनाता है।
बहुत खूब, मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।